ममाचक्ष्वतवाधिमूलम् वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमं वसौ भगम्। वसुंधरे येन विकर्षितासि येन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमं वसौ भगम्। इदं ममातक्ष्वतवाधिमूलम् नवाते बलिनां बलीयसा इदं यह मम मुझको आचक्ष्व बताओ तव तुम्हारे आधिमूलम तुम्हारे दुख की जड़ वसुंधरे हे समस्त धन की खान ये न जिससे विकर्षिता असि इतनी दुर्बल हो कालेन समय के प्रभाव से वा अथवा ते तुम्हारा बलिनाम अत्यंत शक्तिशाली से बलीयसा अधिक शक्तिशाली सुर अर्चितम देवताओं द्वारा वंदनीय किम क्या हृतम छीन लिया अम्ब माता सौभगम सौभाग्य। हे माता आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान की कृपा से प्रत्येक लोक पूर्णतः सज्जित रूप से सृजित होता है, अतएव यह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्णतया सज्जित ही नहीं अपितु जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो सारी पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से समृद्ध हो जाती है, जिससे स्वर्ग के वासी भी बड़े प्यार से इसकी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा से सारी पृथ्वी तुरंत बदल जाती है, वे अपनी इच्छा अनुसार इसे बिना बना बिगाड़ सकते हैं। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर है या भगवान से स्वतंत्र है। हरे कृष्ण। हे माता आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाला प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। ये शब्द धर्म जो बैल के रूप में था, माता पृथ्वी को कह रहा है जो गाय के रूप में बड़ी दुर्दनीय अवस्था में आंखों से आंसू बहाए खड़ी थी। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार महाराज परीक्षित को 5000 साल पहले जो विश्व के सम्राट थे, ये सूचना मिली कि उनके राज्य में कली प्रवेश किया है, तो तुरंत रथ पर आरूढ़ होकर अपनी सारी सेनाओं के साथ शस्त्र अस्त्र सब धारण करते हुए निकल पड़े। और कहा जाता है कि सरस्वती के तट पर उन्होंने ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा, जहां एक काला सा व्यक्ति राजा का रूप धारण किए गाय पर पाद प्रहार कर रहा है, बैल पर, और वो गाय देखकर रो रही है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कलयुग के शुरुआत में धर्म, धरणी यानी पृथ्वी और कली ने ये रूप धारण किया था। हालांकि आम लोगों को ये अदृश्य थे, ये और कोई नहीं देख पा रहा था, केवल परीक्षित महाराज ने ये देखा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसका मतलब ये है कि महाराज परीक्षित अपनी योगिक दृष्टि से ये देख रहे थे, क्योंकि उनकी तीव्र इच्छा थी ये देखने की, और इसीलिए वो देख पाए। तो अपने ध्यान पूर्वक योगिक दृष्टि से महाराज परीक्षित ने इस दृश्य को देखा, जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे थे। बैल धर्म का स्वरूप है, धर्म जो है बैल का स्वरूप धारण किया था, प्रतिनिधित्व करता है, और उसके तीन पैर टूटे हुए थे, तीन पैर नहीं थे, एक पैर पे वो लड़खड़ा रहा था, और बगल में गाय खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू आ रही थी, बहुत ही दुर्बल हो गई थी और शोक कर रही थी, और ये काला व्यक्ति कली स्वरूप राजा के रूप धारण किए इन दोनों पर प्रहार कर रहा था। 5000 साल पहले परीक्षित महाराज ने इसको देख लिया और ये समझ गए कि कली का प्रभाव किस चीज पे होगा, किस तरह से होगा, कैसा होगा। 5000 साल पहले व्यासदेव ने भागवत में इसकी रचना की और इसका ये सूचना हमें दिया है, जो आज हम साफ साफ देख सकते हैं। ये भागवत की महानता है। जो भागवत पढ़ा है उसे कोई भी चीज आश्चर्य नहीं लगेगा इस पूरे विश्व में। त्रिकालदर्शी होने के कारण व्यासदेव ने कोई भी शुद्ध भक्त के समान संपूर्ण रूप से उन्होंने देखा क्या परिस्थिति होने वाली है इस कलयुग में जैसे 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 समय बढ़ता जाएगा। और जो भी व्यक्ति शास्त्र के द्वारा खास करके भागवत के द्वारा चीजों को समझता है, कोई भी परिस्थिति में वो कभी विचलित नहीं होगा और मोहित नहीं होगा। नहीं तो कभी कभी हम सुनते हैं, अखबार में कुछ पढ़ते हैं, तो बहुत ही आश्चर्य, ऐसा भी होता है, लोग इतने निम्न श्रेणी पर जा सकते हैं लोग कि माता अपने बच्चे को गर्भपात कर देती है, या लोग गाय को मार देते हैं। कई साल पहले मैं जब स्कूल में था, एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, शायद पांचवी छठी में था मैं, गर्मी का दिन था, तो एक आदमी आया एक बड़े कैन में पानी लेके और सबको देने लगा, सबने पिया। देने के बाद फिर आया और सबसे पांच पांच पैसे मांग रहा था, तो सब आश्चर्यचकित हो गए, बोले पानी के पैसा, पानी के लिए कोई पैसा दिया जाता है? आज पानी बिना पैसा के मिलता ही नहीं, सबसे बड़ा बिजनेस है, 12 रुपया दो तो एक बोतल बस, और भी उसके दूसरा पानी कोई पीने को हिचकिचाता है, डरता है, बड़ा बिजनेस है। उससे पहले एक ऐसा समय था जब खाना कभी बिकता नहीं था, खाना भी कोई बेचने का चीज है, वो तो दान देना है बस, कोई भूखा है तो खाना खिलाना उसको बस। ऐसे बहुत सारे जो यात्री जो जाते थे, सड़क के बगल में कुछ धर्मशालाएं बनती थी जहां मुफ्त में खाना मिलता था, रहने को मिलता था, तो इसीलिए वानप्रस्थ लोग आराम से निकल जाते थे। निकल गया तो कोई तक नहीं, कहीं ना कहीं धर्मशाला होगा, खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, सुबह निकल जाना बस। तीर्थ स्थान में हर जगह वैश्य लोग क्षत्रिय लोग खोलते थे बड़े बड़े धर्मशालाएं, खाना कभी बेचा जाएगा कोई सोचे नहीं थे। होटल इंडस्ट्री आज सबसे बड़ा है, हर तीसरा दुकान कोई भी सड़क में आप देखो खाने का ही है। तो आश्चर्यचकित लगेगा, अगर कोई 5000 साल वाला व्यक्ति अभी आएगा तो बेहोश हो गया जाएगा, बोला ऐसा भी होता है क्या दुनिया। तो इसीलिए आश्चर्यचकित हो गए शौनकादि ऋषिगण, क्या गाय को कोई मार रहा था, लात मार रहा था और राजा का वेश धारण किए? बोले हमको और बताइए, अगर कृष्ण से संबंधित हो तो भावे हमारे लिए आश्चर्य नहीं है, हम आंखों के सामने देखते हैं तो बोले हाँ तो होता ही है, नहीं हुआ तो आश्चर्य, ये हमारी परिस्थिति है। तो यहां परीक्षित महाराज देख रहे हैं, और तब धर्म जो ये दो चीज पर प्रहार होने वाला है कलयुग में, किसके द्वारा? तथाकथित नेताओं द्वारा, तथाकथित क्षत्रियों द्वारा, जो राजनीतिक पदवी पर हैं, राज्य का सब पूरा संभाल रहे हैं पर योग्यता नहीं है उनके अंदर, लो क्लास म्लेच्छ यवन लोग हैं, वो राजा का वेश धारण करके इस पृथ्वी का शोषण करेंगे। और किस तरह से? ये दो चीज पर प्रहार होगा, धर्म और धरती पर। दे विल एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेस ऑफ नेचर, पृथ्वी माता है तो उसका शोषण करेंगे, और दूसरा धर्म को खत्म कर देंगे। दीज आर द प्रोमिनेंट क्वालिटी, कलयुग का प्रमुख लक्षण यही है। और ये किनके द्वारा होगा? जो क्षत्रिय हैं, जो पूरे राज्य का संरक्षण करना चाहिए, उस संरक्षण करने के बदले उनका एक्सप्लॉइट, क्या बोलते हैं, शोषण करेंगे। तो यहां बताया गया है साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो पुत्र विहीन माता के समान शोकग्रस्त दिख पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य चला गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया, धर्म और धरणी संवाद प्रथम स्कंद के इस 16वां 17वां अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म धरणी से प्रश्न कर रहा है कि आपके शोक का कारण क्या है और धरणी इसका उत्तर देती है और धर्म की स्थिति को देखकर वो भी शोक करती है। तो ये दो धर्म और धरणी जो संवाद है जिसको परीक्षित महाराज बड़ी बुद्धिमान होने के कारण राजऋषि होने के कारण तुरंत समझ गए और समझ गए कि इस समस्या का हल क्या करना चाहिए। तो धर्म कहता है, धर्म उवाच कच्चित् भद्रे नाम यमात्मनस्ते विच्छायासी म्लायतेशन मुखेन आलक्षये भवतीन अंतराधिम दूरे बंधुम शोचसी कंचनाम्ब। धर्म कहता है, और यहां ये श्लोक श्लोक नंबर 19 से लेकर 24 तक, यानी कितना, 5 श्लोक, 5 श्लोकों में कलयुग के लोगों की क्या स्थिति होगी जिसको देखकर ये बैल या धर्म, जो धार्मिक लोग आंखों में आंसू बहाएंगे, ये यहां अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। तो धर्म यहां पहला प्रश्न कह रहे हैं, कारण पूछ रहा है धरणी से। धर्म ने बैल के रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं सस्त तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप काली पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? तो एक एक लक्षण भी इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये पृथ्वी पर जो भी लोग हैं उन लोगों का ये हालत होने वाला है, सब दुखी रहेंगे। तो जब धर्म और धरणी खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो समझ लेना कि पृथ्वी की स्थिति जो है बहुत प्रसन्न है और सब लोग सुखी रहेंगे, शांति रहेगी, आनंद रहेगा। पर नहीं, तो निश्चित रूप से सब लोग दुखी रहेंगे। ये दोनों को, बैल और गाय, कितना महत्व है प्रभुपाद जी समझाते हैं इसके तात्पर्य में। आज की परिस्थिति क्या है, दोनों को मारा जा रहा है, दोनों को खाया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जो ब्राह्मण संस्कृति है, वर्णाश्रम संस्कृति को नहीं जानते हैं, और उनका रक्षण कैसा किया जा सकता है? अगर हम ये ब्राह्मण या वर्णाश्रम धर्म का प्रचार करें तो अपने आप सारे जो समस्या है उसका हल हो सकता है। और वर्णाश्रम धर्म के स्थापित करने से जो मोरल ऑफ द सोसाइटी, जो धार्मिक वृत्ति है, वो बढ़ जाएगी और शांति और समृद्धि निश्चित रूप से बढ़ेगी। लोग बड़े शांत हो जाएंगे और समृद्धि रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पर दुर्भाग्यवश न जानने के कारण, समृद्धि के कारण या आर्थिक प्रगति के कारण और के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अज्ञान के कारण न जानते हुए जिस चीज को रक्षण करना है उसका उसको खत्म कर रहे हैं और जिसको नष्ट करना है उसको बढ़ा रहे हैं। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि असुरों का लक्षण क्या है, अशुचि व्रता। धर्म क्या है नहीं जानते, धर्म को अधर्म समझेंगे, धर्म को अधर्म को धर्म समझेंगे, ऐसी परिस्थिति है ये। तो लोगों का दुख का कारण क्या है, विच्छायासी। विच्छायासी मतलब शोक से ढका हुआ। तो हर एक व्यक्ति हमेशा चिंतित रहेगा, शोक से ढका रहेगा। कभी भी कलयुग के व्यक्ति को देखो, हमेशा एकदम ऐसा थोड़ा मुरझाया हुआ लगेगा। पाश्चात्य देश में जहां भौतिक रूप से बहुत प्रगतिशील देश है, पर किसको भी देखो दुखी लगते हैं कोई, और ट्रेन में भी पूरे सब लोग खड़े रहते, हजार हजार लोग ऐसे घुस के खड़े रहते, पर सब लोग अपने ऐसा एकदम गंभीर और दुखी, और कितने लोगों के चेहरे में तो कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है, भूत जैसा दिखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो अपना शरीर ये बना बुढ़ापा आ जाता है तो चमड़ी को खींच खींच के आंख ऐसा हो गया, ऐसा लगता है कुछ मतलब सामने भूत दिखता है तो कैसा दिखता आदमी, ऐसा हो गया है, चमड़ी को पीछे करते वो लोग, क्या बोलते हैं बुढ़ापा को जो आता है, हाँ उसको पीछे करने के लिए उसको टाइट कर देते ऐसा, और ये खींच लिया ये खींच लिया ऐसा, तो उनका एक्सप्रेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा हंस भी नहीं सकते क्योंकि सब टाइट हो गया कृत्रिम रूप से। और साधारणतः भी सब कुछ है, सुख है समृद्धि है सब कुछ है, पैसा है उनके पास, भोग करने की वस्तु है, सुख नहीं है सुखी नहीं है, भोग करने की वस्तु है, मेटीरियल फैसिलिटी सब कुछ है, पर बिच्छायासी हमेशा चिंतित, और हरेक को कोई ना कोई बीमारी है, अंतराधीन, अंतराधीन मतलब इंटरनल डिजीज, मानसिक। 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा जो समस्या है वो कैंसर नहीं है, एड्स नहीं है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी कुछ नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है तनाव, मानसिक बीमारी, अंदर ही अंदर वो घुट रहे हैं, न सुख है न शांति है कुछ नहीं। तो विच्छायासी अंतराधिम दूरे बंधुम शोचसी, दूरे बंधुम शोचसी का मतलब है अपना बंधु जो बहुत दूर देश में उसके बारे में सोचता रहेगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, नो फैमिली इज ब्लेस्ड टू लिव टुगेदर, माता कहीं काम कर रही है, पिता कहीं और है, बच्चे कोई दूसरे पृथ्वी के दूसरे ओर है, बच्ची कहीं और हॉस्टल में है, ये उसके बारे में सोच रहा है, वो उसके बारे में सोच रहा है, सब जीवन जी रहे हैं, पारिवारिक सुख नहीं है कलयुग में, बच्चे कहीं और चले गए, बूढ़े मां बाप उधर बैठे हुए हैं, कहां है बच्चा, एक बच्चा अमेरिका में है, डॉक्टर है वो खूब कमाता है, दूसरा लॉयर है वो उधर है, और आप हम इधर हैं, फोन करते रहते हैं, हम लोग बातचीत करते रहते हैं, दूरे बंधुम शोचसी। तो सिर्फ बेसिक खाने के लिए एक अलग अलग लोग अलग अलग रहेंगे, कभी पत्नी पति से दूर, पति पत्नी से दूर, बच्चे कहीं और, दूरे बंधुम शोचसी, ये कलयुग का लक्षण है, ये होने वाला है। फिर कहते हैं जो पृथ्वी गाय रो रही है उसका कारण पूछ रहे हैं, पादैर न्यूनम शोचसी मैक पादम आत्मानम वा वृषलै भोक्षमाणम आहो सुरादीन हृतयज्ञ भागान प्रजा उत स्विंध घवत्यम वर्षति। मेरे तीन पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं, क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही है या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षण आपका शोषण करेंगे, मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी है कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, क्या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही है। मैं मेरे तीन पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं, क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही है। वो बैल का तीन पैर कटा हुआ था और सिर्फ एक पैर पर वो भी लड़खड़ा रहा था। तो प्रभुपाद समझाते हैं, सत्यम शौचम तपह दया, ये धर्म के चार पैर हैं, और शुद्धता तब चली जाती है जब अवैध स्त्री अवैध संबंध व्यक्ति करता है, शुद्धता मन की चली जाती है, और फिर तपह तपस्या चली जाती है जब इंटॉक्सिकेशन किसी प्रकार के नशा पान, और दया चली जाती है जब अपनी जिह्वा को तृप्त करने के लिए हम किसी और जीव को काट खाने के लिए तैयार हैं। तो ये तीनों आज स्वीकार किया गया, कोई तकलीफ नहीं इसमें। कोई अगर करता है, कोई थोड़ा भी मतलब कुछ, अभी अब देखते हैं हर 5 मिनट में यहां से वो साइकिल के ऊपर मुर्गी, कुछ कुछ फर्क ही नहीं पड़ता लोगों को। अगर कोई सभ्य जगह में कोई कई साल पहले, शायद 500 साल पहले ऐसा देखते तो लोग बेहोश हो जाते, पर अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एब्सोल्युटली अंडरस्टूड। एक ही चीज है और वो है सत्य, और वो भी लड़खड़ा रहा है वो, और वो चला जाता है जब गैम्बलिंग। तो इस तरह से ये चार चीज जहां है तो पूर्ण रूप से धर्म चला गया है। सत्य थोड़ा अभी भी थोड़ा लोग सम्मान देते हैं, कोई सत्यवादी है, कोई सत्य बोलता है, कोई प्रामाणिक है, तो उसको थोड़ा बहुत सम्मान है अभी भी, कम से कम हमारा ये सत्यमेव जयते भारत का ये। तो कलयुग में ये होने वाला है, और धीरे धीरे जैसे कलयुग का अंत होगा वो भी चला जाएगा पूर्ण रूप से। तो पादय न्यूनम शोचसीम एक पादम आत्मानम वा वृषलैर भोक्षमाणम। क्या आप इसलिए दुखी है कि आपके सारे वंशज को मार के काट खा जाएंगे लोग? क्या इसीलिए आप शोक कर रही है कि ऐसा समय आने वाला है बिना कोई हिचकिचाहट के आर्थिक प्रगति के रूप में लोगों को बताया जाएगा? जैसे मैं परसों बता रहा था, जब ब्रिटिश राज्य के समय उससे पहले गायों की संख्या बहुत थी, कहीं भी देखो गाय घूमते थे गांवों में, लोगों की संख्या से गायों की संख्या ज्यादा थी हमेशा। पर धीरे 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 उनको बोझा लगने लगा, ये क्यों इतना खिलाना, इनको मार डालो, आर्थिक प्रगति होगी, ये सब बोझा चला जाएगा। तो और इसीलिए सैकड़ों के स्तर पर हर रोज गोहत्या शुरू हो गई। क्या आप इसलिए दुखी है कि अब देवताओं को यज्ञ के बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे? अनाथ भवंति भूतानी, गीता में भगवान कहते हैं अनाथ भवंति भूतानी। अगर जीवों को खुश रहना है, खाना चाहिए, बिना खाना के कैसा सुखी रहेगा? अन्नाद भवंती भूतानि, तो अन्न कहां से आता है? पर्जन्याद अन्न संभव, बारिश से आता है। ये बारिश कहां से आता है? हम बोलेंगे बादल से आता है। बादल कहां से आता है? वो कहां से आता है? ये बहुत स्थूल रूप से हम देख रहे हैं। यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ के द्वारा बारिश आती है, और यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ की विधि जो है अपना कर्म, यत करोषि दशनाशी तत् कुरुषु मद अर्पणम, वो यज्ञ है जब शास्त्र के आधार पर। और कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि, और कर्म क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि शास्त्र कहता है। तो शास्त्र कहता है कि क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है, और वो कार्य करना मतलब यज्ञ। ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम, और वो शास्त्र कहां से आया? भगवान कहते हैं गीता में वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत, वेदों की रचना करने वाला मैं हूं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो अगर भगवान के नियम जो उन्होंने शास्त्र पर बताया गया है उसके आधार पर जिएंगे तो वो यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। तो सारी जरूरतें भगवान ने देवताओं की जब सृष्टि की, यज्ञ सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवो इष्ट कामधुक, इष्ट कामधुक आपकी सारी जरूरतें आपकी इच्छाएं नहीं, आपकी सारी जरूरतें, लोगों को खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, ताप जरूरी है, पेड़ पौधे और धन संपत्ति, हीरे जवाहरात सब, मणि सब मिले, सब रखा हुआ है। भगवान ने पूर्ण मदः पूर्ण विदम पूर्णात् पूर्ण मदच्यते, पूर्ण बनाया है एक्चुअली, अपने आप में परफेक्टली बनाया भगवान ने। पर इस साइकिल को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से होशियारी कर रहे हैं हम लोग, नहीं नहीं भगवान थोड़ा गलती की है, मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करूंगा और भी सुखी हो जाएंगे। ये मूर्खतावश, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। तो यज्ञ विधि जो है बताई गई है, पंच महायज्ञ हर एक गृहस्थ के लिए बताया गया है। पर इस कलयुग में ये हरिनाम यज्ञ अलग से कोई यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक भक्त का संपूर्ण जीवन ही एक यज्ञ है, कर्मणा मनसा वाचा, क्योंकि पूर्ण रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एक प्रामाणिक भक्त जो वही सिंसियरली अपने शरीर से, मन से, वाणी से भगवान की सेवा करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा व्यक्ति का पूरा जीवन एक यज्ञ है, और इसीलिए उसको दूसरे यज्ञ की जरूरत नहीं। संकीर्तन यज्ञ, कीर्तनीय सदाहरि, तो भगवान का गुणगान करने में जो पूरा अपना जीवन लगाया है उसके लिए दूसरे यज्ञ की जरूरत नहीं, कर्मकांडी यज्ञ की जरूरत नहीं, संकीर्तन यज्ञ अगर हो रहा है। इसीलिए प्रभुपाद के, अगर ये 16 माला तुम कर रहे हो, देन यू नो फॉर श्योर दैट यू आर सेटिस्फाइंग द लॉर्ड। और शुद्ध, उस शुद्ध हृदय से फिर जब हम कोई भी कार्य करते हैं, ऐसा कार्य करेंगे जो भगवान को प्रसन्न करेगा, और इस तरीके से करेंगे जो भगवान को प्रसन्न करेगा। अंततः सोनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। जो भी हम धर्म करते हैं, वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ, ब्राह्मण, जो भी क्षत्रिय धर्म है, उसकी परिपूर्णता क्या है, कब वो परिपूर्ण है, संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करना। उसीलिए दूसरा कर्मकांड यज्ञ ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरत नहीं बताई गई है। पर नहीं तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा, नहीं तो स्तेन एव सह, तुम चोर हो। आप इलेक्ट्रिसिटी लाइट बल्ब जला रहे हो और महीने में आपको बिल आता है, सरकार बिल भेजती है, तुमने उपयोग किया ना इतना सब, लाइट पंखा चलाया, सब कुछ चलाया, ये देखो बिल आया, पानी का बिल आया, लाइट का बिल आया, हम उसको फाड़ के फेंक देते, नहीं 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 आया, तो क्या करेंगे, चोर हैं हम लोग, दे नहीं रहे वापस, तो क्या करेगा सरकार, क्या करेगा, बिल काट देगा बस, लाइन बोला तीन महीने का ड्यू है, अभी तक भरा नहीं आपने, तो लाइन कट जाएगा। तो इस तरह से हवा, पानी, सूरज, पृथ्वी, कितना हम ले रहे हैं भगवान से फ्री में। अगर नाक के ऊपर एक मीटर लगाया जाए, कितना हवा तुम लेता है हर रोज, और भगवान बिल भेजने लगे, वायुदेव अपना बिल भेजने लगे, सूरज अपना बिल भेजने लगे, वरुण देव अपना बिल भेजने लगे, पृथ्वी माता अपना भेजने लगी, हर रोज मेरा चलते रहता है, मेरा रोड टैक्स मेरे ऊपर गाड़ी चलाता रहता है, चलता रहता है, बलमूत्र विसर्जन करता रहता है, वो लोग सब लोग अपना अपना बिल देने लगे, सारे देवतागण, देवर्षि भूताप त्रिणाम पितृणाम न किं करो नाय मृणीच राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। ये लोग सब दे आर लाइक द एक जेल है, ये भौतिक संसार, और जेल के प्रतिनिधि बहुत सारे हैं, उनका काम है सुधारना हमको कि कृतज्ञता सीखो, ऋण है, तुम ऋणी हो, ये भाव सीखो, और इसीलिए ये यज्ञ किया करो। तो एक कृतज्ञता और आभार मानना, इतने समय ले रहे हैं पर कृतज्ञता नहीं है, तो आसुरिक प्रवृत्ति है। तो देवता प्रकृति मतलब क्या, हम इसको स्वीकार करते, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देते हैं और अपना जीवन उनके सही तरह से चलते हैं, पर नहीं तो हम लोग चोर हैं, स्तेन एव सह, और चोर मतलब सजा मिलेगा ही, और इसीलिए हम लोग आज के दुनिया में हम देखते हैं, लोग दुखी हैं, लोग तड़प रहे हैं, बीमारी कैसा बीमारी, पाप रे, छोटे छोटे उम्र में ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारी जिसका नाम भी पहले नहीं सुना था। निश्चित रूप से, क्योंकि चोरी कर रहे हो तो सजा मिलेगी, प्रकृति सजा देने वाली है, कोई भी प्रकृति में फ्री नहीं मिलता। कोई समझ रहा है कि फ्री में मिल रहा है तो मूर्ख है वो। तो क्या उसलिए आप रो रही है कि देवताओं के यज्ञ के बलि के अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे। पर प्रभुपाद जी ने कहा कि हरिनाम संकीर्तन जहां होगा तो बारिश अच्छा होगा, सुख होगा, समृद्धि होगा, सब सब कुछ रहेगी वहां। और हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी जब शुरू किए तो एक समय एक मायापुर के लेक्चर में बता रहे थे, 74-75 का लेक्चर, बोले हम लोग काम नहीं करते, लोग हमको देखते हैं ब्रह्मचारियों को और यहां जो कृष्ण इस्कॉन वालों को बोले क्या आप एकदम अच्छे खासे मोटे तगड़े गोरे गोरे लगते हो तुम लोग, हाँ क्या काम करते हो, खाते ऐसे खा पी के अच्छा लगते हो, क्या काम करते हो? बोले कुछ काम नहीं, हरिनाम करते हैं हम लोग बस। बोले कैसा आता है? बोले देखो हम लोग सिर्फ हरिनाम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान भेज रहे हैं। वी आर गेटिंग अबाउट $70,000 ए डे। उस समय 74 में प्रभुपाद ने बोला स्टार्टेड सिंगल हैंडेडली विथ 40 रुपीज एंड नाउ वी हैव सो मेनी टेम्पल्स, सो मेनी डिवोटीज, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। अगर इस्कॉन अकाउंट देखेंगे आप, पूरे दुनिया में जितने सारे सेंटर हैं उसका मंथली बिल, सबका मंदिर का भरने का मंथली बिल कैलकुलेट करोगे, कहां से आता है ये पैसा? आएगा कहीं से तो आएगा। आप अगर हम अगर भगवान के प्रति हमारा जो जिम्मेदारी वो करते रहेंगे तो भगवान का जिम्मेदारी है। आम तो आम सर्व मा शुचः, चिंता मत करो। ऑफकोर्स हमको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, हमारे लिए जो जरूरत है हमारे लिए वो मिलेगा। या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही है, और आज देखते हैं जैसे जैसे अब कलयुग बढ़ता जा रहा है दुर्भिक्ष और सूखे के कारण, मतलब ड्राउट, फैमिन, सुनामी, अर्थक्वेक बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में जो हुआ है बहुत सालों तक नहीं हुआ था, एकाएक बढ़ रहा है। सब नेचुरल डिजास्टर्स, बहुत ज्यादा अतिवृष्टि, अनावृष्टि सब जगह बढ़ रहा है। तो ये सब धर्म समझ सकता था और इसीलिए पूछ रहा है। और फिर कहता है अगले श्लोक में, अरक्षमाणा स्त्रिय उर्वी बालान शोचस्यो पुरुषादैव वा पुरुषादैरिवार्तां वाचं देवी ब्रह्म कुले कुकर्म ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाभ्यान। क्या आप उन दुखियारी स्त्रियों पर दया भाव ला रही हो जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेली छोड़ दी गई है? ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग का लक्षण है कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, तो सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। बच्चे मां बाप से स्वतंत्र रहना चाहे, स्त्रियां अलग रहना चाहती है, पुरुष अलग रहना चाहते हैं, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के ऊपर निर्भरता, किसी का अधिकार स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि सब उसका उनका शोषण कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, आंख में अगर क्या बोलते हैं, हां मोतीबिंदु हो गया, तो मोतीबिंदु निकालने के बदले आंख को ही निकाल देना। गुरु न सस्यात् छद्रो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् नमोचेत समुपेत मृत्यु। जो भी अधिकार स्वीकार करता है भगवान की प्रतिनिधि के रूप में, तो पत्नी पति के ऊपर, बच्चे मां बाप के ऊपर, शिष्य गुरु के ऊपर, और प्रजा राजा के ऊपर निर्भर रहती है। उनका संरक्षण करना, उनको मेंटेन करना ये कर्तव्य है, पर वो नहीं मेंटेन करने के बदले जब शोषण करते हैं तो वो अधिकार को त्याग कर वो स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब स्वतंत्र हो जाते हैं, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है जो उसका मूल स्वरूप नहीं है, तो फिर चिंताग्रस्त हो जाते हैं। जितना आप हम स्वतंत्र रहेंगे, जो हमारा मूल स्वरूप नहीं है, उतना चिंताग्रस्त हो जाएंगे, उतना अकेलापन महसूस होगा और उतना डिससेटिस्फैक्शन, अतृप्त महसूस करेगा आदमी, और निश्चित रूप से उनका शोषण होगा और होता ही जाएगा। तो अरक्षमाणा स्त्रिय उर्वी बालान, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के परिवार में भी जो जन्म लिया है, नेचुरली दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, और वो लोग सब अभी बुद्धि है, पर ब्राह्मण का जो लक्षण है ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण, वो नहीं होने के कारण, जैसे प्रभुपाद कहते हैं सांप बड़ा खतरनाक है, सांप को कोई पास नहीं आएगा, सांप देख के चला जाएगा दूर, पर अगर सांप के सर पे एक मणि हो, चमकता हुआ हीरा हो, तो लोगों को लगेगा ये हीरा है, तो हीरा को देख के पास आएंगे और सांप डसेगा। तो इस तरह से अगर कोई मूर्ख हो उसके पास कोई जाएगा नहीं, पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या इंटेलिजेंस, साइंटिस्ट्स, स्कॉलर्स, लोग आकर्षित होते हैं, क्या बुद्धि है इसका, क्या इंटेलिजेंस है। स्टीफन हॉकिंग इंस्टीट्यूट कैम्ब्रिज में मैं गया था, वहां स्टीफन हॉकिंग, दिस ब्रिलियंट पर्सन, वो पैरालिसिड हो गया, उसको मतलब चल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता वो, और कुछ तो करता है वो माइंड से ऐसा मैपिंग करके, उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है तब जाके वो समझ में उसका बुद्धि, और उसने ही हैज गॉट सो मेनी अवार्ड्स, ब्रिलियंट, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एब्सोल्युटली ऑफकोर्स एथिस्ट। तो लोग पागल हो जाते हैं उसका एक एक वाक्य भी जब बोलता है तो सुनने के लिए पागल होते हैं, पर उसके अंदर वो नास्तिकता का विष भी घुस रहा है। अगर मूर्ख व्यक्ति कोई कुछ बोलता है तो कोई सुनता नहीं, गंभीरता से नहीं लेता, पर ऐसे विद्वान व्यक्ति विद्वत्ता से आकर्षित होते हैं, उनके ज्ञान से आकर्षित होते हैं, पर वो ज्ञान नास्तिक होने के कारण नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये यहां बताया जा रहा है कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या यह आप देखकर दुखी है कि ब्राह्मणों ने राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति के आदर नहीं करते। हमारे ही देश में एक ऐसा राजनीतिक पार्टी है जो टोटली वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध है, और उसके मेन सेक्रेटरी जो है सब ब्राह्मण लोग हैं, सब ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण मतलब क्या, कलयुग में कलव शूद्र संभवा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सही में ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ऐसे ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से कलयुग का सारा लक्षण 5000 साल पहले धर्म ने देख लिया, परीक्षित महाराज ने ध्यान किया, व्यास देव ने वर्णन किया, और जो भी पढ़ रहा है परंपरा में वो साफ साफ समझ सकता है, उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कलयुग का लक्षण है। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हैं, और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है, क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक करती हैं। कुछ लोग पशुओं को पालते हैं, बकरियों और इत्यादियों को, और खूब खिलाते हैं, खिला खिला के उसको मोटा बनाते हैं, और बकरी हर रोज खाती है उसके उनके हाथों से, ये सोचकर आह कितना खिलाता है मुझे, कितना प्रेम करता है, पर वो खिला रहा है, देख रहा है थोड़ा और मोटा होना चाहिए, और थोड़ा मोटा होना चाहिए, और जब सही मोटा हो गया और एक अच्छा दिन देखकर इस तरह से जो राज्य के नेता हैं वो ऐसे इंद्र तृप्ति देते रहते प्रजा को ताकि वोट देते रहो, देते रहो होठ में आ गया ना अब आ जाओ काट काट के ये बिल वो टैक्स ये टैक्स चूस के रख दिया खत्म मार दिया। पहले हाथ पैर जोड़ के करो करो हमारा तुम्हारा ये सेवा ऐसा खिला खिला के तुम ही महान हो तुम ही हमारे तुम्हें माता पिता ये सेवा करूंगा मैं ये सेवा करूंगा और एक बार आ गया सही दिन आ गया अभी आ जाओ सब लोग पांच साल तक पूछने का नहीं चुप। सो ये परिस्थिति देखकर क्या आप शोक कर रही है। अब जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं करती और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है क्या आप इस कारण अप्रसन्न हैं? एक कुत्ता एक कुत्ती के साथ अगर सड़क के ऊपर ऐसा मैथुन करता है कोई उसको गंभीरता से नहीं लेता पर एक स्त्री और पुरुष ऐसा व्यवहार करे निर्वस्त्र अवस्था में अगर खड़े हो जाए तो निश्चित रूप से पब्लिक न्यूसेंस न्यूसेंस वैल्यू तो तुरंत उनको ले जाता है पर आज ऐसा नहीं है। कॉलेजेस में जाओ जहां कॉलेजेस मतलब स्टडी ऑफ कल्चर एजुकेशन सेंटर ऑफ एजुकेशन वहां सबसे ज्यादा यह देखने को मिलता है। तो क्या आप इसलिए शोक कर रही हो? हे माता पृथ्वी भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहां उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनसे विहीन हो गई हैं शायद आप उन्हीं कार्यों की सोच रही है और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही है। भागवत में वर्णन है जब भगवान के चरण कमल पृथ्वी पर लग रहे थे तो ऐसी समृद्धि थी पृथ्वी में घास ऐसे उगे थे मानो रोमांच हो गया हो माता पृथ्वी का भगवान के संपर्क में आने से। जैसे गोवर्धन भगवान का संपर्क हो गया बाएं हाथ की छोटी उंगली का तो एकदम हर्षोल्लास एकदम ऐसे खड़े हो गए घास कुछ एक पत्ते भी इतना भी बारिश आया कुछ नहीं हुआ भगवान के संपर्क में आने से। तो भगवान के चरण चिन्ह लगने से पृथ्वी बहुत ही और ऐसा सौभाग्य था पृथ्वी का कि देवतागण भी पृथ्वी को कह रहे थे कि कितनी सौभाग्यशाली है तुम कि डायरेक्टली भगवान के चरण कमल देवताओं भी पृथ्वी पर पैर नहीं रखते जब आते हैं मनुष्य लोकों में 6 इंच ऊपर ही खड़े रहते हैं वो स्पर्श नहीं करते विष्णु भी कभी स्पर्श नहीं करते वो पृथ्वी महाराज के इसमें है, आए हैं वो गरुड़ के पास ऐसे खड़े हैं चरण देखो टच नहीं हो रहा है। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत में तीनों लोकों में पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ है और सारे पृथ्वी में मथुरा सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान वहां जन्म लिए और पूरे मथुरा मंडल में वृंदावन श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान वहां सुंदर लीलाएं की और वहां भी गोवर्धन श्रेष्ठ है क्योंकि डायरेक्टली भगवान ने गोवर्धन को अपने बाएं अपने उंगली में उठाया और गोवर्धन में बहुत ही अंतरंग लीलाएं श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान ने की और उस गोवर्धन में भी श्री राधा कुंड जो है सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो श्री राधा रानी से अभिन्न है। इतनी सौभाग्यशाली पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में स्वर्ग लोकों से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया पृथ्वी को और उसमें भी मथुरा मंडल उसमें भी वृंदावन। तो क्या आप इसलिए दुखी है कि अब वो स्पर्श नहीं रहा अब वो संपर्क अब वो संग नहीं रहा भगवान श्री कृष्ण से क्या आप उसी लिए दुखी थे? और अंत में कहते हैं हे माता आप सारे धन की खान है पृथ्वी जो है सारे धन की खान है सब कुछ है पृथ्वी के अंदर कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाला प्रबल काल ने कलयुग देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। ये भगवान की इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से करोड़पति रोड पे आ जाता है और रोड वाला करोड़पति बन जाता है, भगवान की इच्छा से, काल के प्रभाव से। निमित्त मात्र भव सव्य साक्षी, काल, जैसे भीष्म पितामह भी कहते हैं, काल ऐसा प्रभावशाली है कि बड़े बड़े ब्रह्मा जी से लेकर बड़े बड़े देवतागण भी कुछ नहीं कर सकते। और काल, कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, अंततः काल जो है भगवान का ही दूसरा स्वरूप है। पर वही काल जो भगवान के शरण नहीं हो रहे हैं, सबसे डरावना चीज है। हर एक व्यक्ति डरता है काल से, जो अभक्त है, जो शरणागत नहीं है भगवान से, मृत्यु से डरता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु मतलब जो जिंदगी भर मैंने तपस्या करके इकट्ठा किया है सब मुझसे छीन, अरे वो छोड़ो, जो इकट्ठा किया छोड़ो, मेरा शरीर खुद चला जाएगा, जो मेरे सारे इंद्र तृप्ति का मूल कारण है, एक साधन है, वही चला जाएगा। इसीलिए मृत्यु से बहुत डरता है व्यक्ति। पर एक भक्त विश्वम पूर्ण सुखाय थे, कुछ फर्क नहीं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शन, उसे मृत्यु का डर नहीं है। मृत्यु के ऊपर सर रख के जाता है ऊपर। हरि बोल। तो इस तरह से धर्म ये प्रश्न कर रहे हैं पृथ्वी माता से, और अगले श्लोकों में ये चर्चा, अब माता पृथ्वी उत्तर देने वाली है कि क्यों मैं दुखी हूं। ये सब कारण है, पर मुख्य कारण ये भी है कि अब भगवान चले गए। कुंती माता कहती है कि भगवान के चरण चिन्ह लग रहे थे तो सारा सुख और समृद्धि था। ईक्षित ही तब ईक्षित ही भगवान के जिस दृष्टिपात होने के कारण सब कुछ। पर कलयुग में, भले कलयुग का सारा लक्षण है ये, पर कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण जो है सब के आत्मा है। अगर आत्मा चला गया तो शरीर बड़ा ही मतलब एबोमिनेबल, कोई स्पर्श भी करने की इच्छा नहीं रखता शरीर को, पर जब शरीर में प्राण प्रवेश करता है तो सब कुछ एकदम हरा भरा हो जाता है, दष्ट पुष्ट हो जाता है। तो कृष्ण सबके प्राण है, भले कलयुग हो, क्योंकि प्रभाव है, समय का प्रभाव है, कलयुग है, कलयुग को नहीं बदल सकते आप, पर आप उस प्रभाव से बच के रह सकते हो अगर डायरेक्टली भगवान के संपर्क में आओगे। आपको एक ऐसा सौभाग्य मिलेगा जो देवतागण भी इच्छा करते हैं, खास करके कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के संपर्क से भगवान के संपर्क में आ जाएंगे, और संपर्क में आ गए कली का असर नहीं रहेगा। परीक्षित महाराज जान गए, आगे आने वाले अध्याय में आएगा, कली परीक्षित महाराज सारग्राही थे, वो जाने कि कली तो आने वाला है, उसको मैं स्थान दे रहा हूं, पर कली में एक अच्छा गुण है, कलयुग में एक अच्छा गुण है, कलौ दोष निधे राजन, कली तो दोषों का कारण है, ये दोषों का खान है, दोषों का सागर है, निधि, निधि यानी भंडार, ये समुद्र, कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण है। इसमें एक महान गुण है जिसके लिए अगर वो सारे दोषों को जो हम सुन रहे हैं, आज मैं देख रहा हूं सबका चेहरा थोड़ा, क्योंकि आज हमने ऐसा चीजों का लक्षण कल वर्णन किया जो दुखी लगता है। देखिए कोई भी चेहरा हंसना नहीं, मुस्कुरा रहा नहीं, खास करके भक्तों को बहुत दुख लगता है सब सुनने से, क्या क्या लोग तड़प रहे हैं, कितना सही में जिसको कृष्ण भावना भाव, कृष्ण भावना मालूम नहीं है। मैं लंदन गया था तो दो कोल्हापुर के वहां भक्त हैं उनसे मिला, और यूक्रेन में गया था तो वहां एक जमशेदपुर का एक डिवोटी है, नरसिंह वपू, इंद्रदुम्न महाराज का डिसाइपल है वो, यूक्रेन की एक लड़की से उसका शादी है, वो वहीं रहता है, तो आके रो रहा था, प्रभु जी ऐसा है यूक्रेन ऐसा है, उधर बहुत मुश्किल है, यहां हमेशा डर लगता है, सेकेंड क्लास सिटीजन जैसा हमको ट्रीट करते हैं, ये वो ये वो, एक घंटा उसने सुना मुझे, तो मैं सुना, तो बोले करना क्या तुझे, बोला अभी मैं भारत जाऊंगा, अभी ये जाऊंगा, वहां रहूंगा जमशेदपुर में, बोला जमशेदपुर में कुछ इस्कॉन सेंटर है क्या, बोले नहीं प्रभु जी आसपास में 150 किलोमीटर तक कहीं भी नहीं है, कुछ नहीं है वहां। फिर मैंने उसको इंडिया के लोगों का क्या हालत हो रहा है सुनाने लगा मैं उसको, लोगों का क्या हालत है, सब लोग वहां देख रहे हैं वहां आने की, और तू यहां आने की सोच रहा है, ये कलयुग का लक्षण है, बाहर का जो कंपाउंड के वो साइड हमेशा ज्यादा हरा भरा लगता है, हमारा कंपाउंड हमेशा गंदा ही लगता है। तो जब मैंने भारत का सारा दोष निकाला तो बोला प्रभु जी पिछले बार मैं गया था, बाप रे कितना तकलीफ, बाबा बाबा बा, नहीं को आने को आके कोई फायदा भी नहीं। तो मैं बोला सुन, तू भारत में रहे या पाश्चात्य देश में कहीं रहे, दो चीज ध्यान में रख बस, कहां तू कृष्ण भावना भावित रह सकता है, कहां तू कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकता है, वो अनुकूल परिस्थिति जहां है तू वहां रह, नहीं तो हमेशा यहां रह के दूरे शोचसी, शोक करते करते तेरा आधा जीवन चला गया है और भी चला जाएगा आधा, और जो कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा, अच्छा खासा भक्तों का संग है, डिवोटी वहां के एकदम फायर्ड अप है, वहां अच्छे भक्त है, भले सेंटर छोटा हो, भले बाहर से थोड़ा तकलीफ हो समस्या रहता है, पर मंदिर के बगल में रहता है, पास में रहता है, रेगुलरली आने को मिलता है, पत्नी अच्छी भक्त है, रेगुलरली सेवा करती है किचन में, डायरेक्टली भगवान की सेवा मिला है, तो जमशेदपुर में मिलेगा क्या भारत में, वो तो नहीं मिलेगा प्रभु जी, और आसपास के सब अभक्त लोग हैं, परिवार का कोई भक्त नहीं है। तो बोला फिर अभी तो सोचूंगा प्रभु जी, आपने बताया तो अभी ठीक से, ऑफकोर्स मेरा मतलब ये नहीं कि वहां ठीक है यहां ठीक है, ऑफकोर्स भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो लजा, ऑफकोर्स भारत भूमि का मनुष्य जन्म तब सक्सेस हो गया, यशस्वी हुआ, जब जन्म सार्थक करी करो परोपकार, नहीं तो फिर भारत में नहीं, भले वृंदावन में जन्म ले लो, तो वहां भी मांस मांस खाते रहते लोग, खाते करेंगे, फिल्म का गाना सुनते रहते हैं वहां हमेशा, ठीक है ब्रजवासी उनको प्रणाम दूर से, हम कुछ बोलना नहीं चाहते, पर फिर भी वहां के लोग वो छोड़ के बंबई में आके जीते, तो रियल मतलब सही में उसका सदुपयोग क्या है, भारत भूमि में जन्म हुआ है मतलब सारे संस्कृति लेके आए हैं, पूरा बैगेज है ऑलरेडी रेडीमेड, और उसमें भी अगर कृष्ण भावना भावित हो गए सोने पे सुहाग, और इसके बाद भी अगर ये वो चीज के बारे में शोक करते करते अगर समय हम लोग गुजार देंगे तो हमसे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। तो हां ये परिस्थिति है अगर देखेंगे पृथ्वी का और धर्म का बहुत ही बिगड़ा हुआ है, पर फिर भी कलौ दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगह, मुक्त संगह इस सारे चीजों से, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग निश्चित रूप से हम असंग संग मतलब संसार में रहकर भी संसार के नहीं रहेंगे, और मुक्त संगह परम ब्रजेत जाने की तैयारी कर रहे हैं, भगवत धाम जाने की तैयारी कर, फिर ठीक है कहीं भी हो, और नहीं कहीं भी हो कोई फायदा नहीं, अगर ये है कहीं भी हो चलेगा। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, गोप्रेमानंदी हरि। एक प्रश्न लेंगे, दो प्रश्न लेंगे, ठीक है।
Oh, yeah.
क्योंकि दो प्रकार का तरीका है, कोई व्यक्ति बीमार है और उसको यहां फोड़ी हुआ है तो वहां फूकना चाहिए, उसमें ऑइंटमेंट लगाना चाहिए, उधर लगाया तो इधर आएगा, इधर लगाया तो इधर आएगा, उधर ठीक किया तो इधर, पूरा फोड़ी 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 पूरा शरीर में फोड़ी, कौन कौन से फोड़ी को लगाओगे? उससे अच्छा है जड़ में पानी डालो, उसको पता करो कि क्या कौन सा बीमारी है, खून ही उसका दूषित हो गया है, उसको ठीक कर दो, एक टैबलेट दे दो, जो खून ठीक हो गया ऑटोमेटिकली सारे जो बबल हैं वो चले जाएंगे। तुम मैकडोनाल्ड को बंद करोगे, वहां जाके धरना करोगे कि देवनार में जाके गोमांस को मत करो, ये गाय को मत काटो, वो करोगे कि बच्चों के अनाथ आश्रम के पास जाके उन लोगों का ये करोगे, क्या क्या करोगे, दोषों का सागर है इधर, कितना कितना करोगे? हो सकता है तो करना चाहिए, 100% वी शुड डू, बट अगर हमारे पास समय और शक्ति और फैसिलिटी कम है और करना बहुत चीज है, अगर सिर्फ एक बोतल पानी है और इतना बड़ा पेड़ है, बुद्धिमान व्यक्ति जड़ में पहले डालता है, क्योंकि मालूम है जड़ में गया तो अपने आप। प्रभुपाद जी ने सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करने को बोला लोगों, किसी तरह से स्फूर्ति दिया, जिससे मांसाहार बंद हो गया, नशा बंद हो गया, व्यभिचार बंद हो गया। तो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पुस्तक में वो एक इंस्पेक्टर पुलिस वाला वो आया और बोला, हम लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं ड्रग एडिक्शन रोकने के लिए और चोरी रोकने के लिए, ये करने क्राइम रोकने के लिए इतना सारा हम लोग खर्चा कर रहे हैं, पर उसका आपका क्या सुझाव है? प्रभुपाद ने कहा, कोई एक सिटी का मेन सेंटर एक जगह हमको दे दो और खाना बनाने के लिए एक जगह दे दो हमको, हम लोग खूब कुकिंग करेंगे, प्रसाद बनाएंगे और एक मेन सेंटर पे हर रोज हरिनाम करेंगे और प्रसाद बांटेंगे लोगों को, सारा चोरी बंद हो जाएगा, सारा क्राइम रेट बंद हो जाएगा। पहले तो समझा ही नहीं, वो सोचा कि प्रभुपाद समझे नहीं वो क्या बोल रहा है, बोला क्राइम का बोल रहा है, खाने के बोल रहा है, कोई डांस करने का बोल रहा है, समझे नहीं वो। फिर उन्होंने प्रभुपाद ने बताया, एक्चुअली ये लोग देखो, ये लोग मांसाहार थे, नशाहारी थे, जुआरी थे, सब थे, स्त्री संबंध करते थे, दे वर ए बर्डन टू द सोसाइटी, आई ओनली गेव देम कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड नाउ नॉट ओनली आर दे रिजॉल्व फ्रॉम ऑल देयर बैड हैबिट्स बट दे आर ट्रेवलिंग ऑल ओवर एंड सेविंग पीपल फ्रॉम ऑल दिस रूट कॉज। तो यस, लेट द सोशल वर्कर्स डू देयर सोशल रिलीफ, लेट द फिलैंथ्रोपिस्ट डू देयर फिलैंथ्रोपिक वर्क, दे शुड डू इट बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग बेटर, वी मे सपोर्ट, वी मे एनकरेज, वी मे अप्रिशिएट देम, बट देर इज नो अदर हायर वेलफेयर वर्कर देन ए सिंसियर फॉलोअर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है, देर इज नो अदर हायर वेलफेयर वर्कर, क्योंकि अच्छा एक जो दारू पीता है उसको किसी तरह से एक सेंटर में डाल के 5,000 रुपया देके एक महीना उसको रख के दारू छोड़ाओगे, वापस आएगा फिर से पीना शुरू करेगा। हमारे एक पहचान है, उन्होंने माता जी है, उसका भाई जो है इतना पीता है, हमेशा उनके घर के सामने आके लेटता है, पैसा दे या नहीं दे समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने अपना पैसा खर्चा करके, शी हैज ए बिग फैमिली स्टिल, शी पेड 5,000 रुपीज उसको एक महीना को एक सेंटर में भेजा वहां सुधरने के लिए, सब कैसे सब आया, फिर से बाहर आया, फिर से वही काम। किसको किसको क्या क्या करोगे आप? कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, इफ यू आर इन ए इन्फ्लुएंशियल पोजिशन एंड यू कैन pass rules to satisfy and stop all these kind of things, very nice, upyog karna chahiye, jaise aap jo doctor ke paas jaoge aisa phodi leke to do cheez karta hai wo, ek to pehle dawai deta hai pet ke liye, ताकि जड़ से ये सब निकले, पर साथ साथ में जो बॉयल हो रहा है उसके ऊपर लगाने के लिए कुछ टेम्पररी ऑइंटमेंट भी देता है। जैसे मुंह में छाले पड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाओगे तो छाले पे ऑइंटमेंट नहीं लगाएगा, पहले बी कॉम्प्लेक्स देगा, बोले अंदर से जो ये निकलने दो, और साथ साथ में अगर जल रहा है अभी अभी टेम्पररी थोड़ा क्या बोलते हैं ग्लिसरीन लगा लो। तो ग्लिसरीन लगाना सेकेंडरी, फर्स्ट थिंग इज गो टू द रूट। सो वी हैव टू इंटेंसली प्रीच, and preaching doesn't mean simply going and speaking. Preaching means somehow inspiring and convincing the people to take up the process. किसी तरह से उनको स्फूर्ति करना, आकर्षित करना कि वो convince हो जाए कि हाँ यहां I will get some relief. तब बहुत अपने आप ये सारे boil निकल जाएंगे, उसकी सारी बुरी आदतें छूट जाएगी और वो 10 लोगों का बुरी आदतें छुड़ा सकता है। So yes, we have to do whatever is necessary, but most of all our energy we have to put in watering the root. अभी देखिए ना, एक व्यक्ति प्रभुपाद के कोशिश करने से literally हजारों हजारों लोग, they are not only saved themselves, but they are saving so many others. One person striking at the root, giving them a deep conviction. अभी मुर्गी ले जा रहा है और मैं मेरे पास सपोज 1,000 रुपया है, मैं उसको देता हूं, ये ले यार ये ले, और वो मुर्गी को पकड़ के मैं छोड़ देता हूं, उधर से आएगा उसको पकड़ के फिर से ले जाएगा, हर रोज मेरे को बेचेगा, वो बिजनेस कर देगा, और क्या मैं मुर्गी लेके यहां बैठूं उनको नहीं पकड़ के रखूं, उनको खिला दाना खिलाते रहूं मैं? अच्छा है उस व्यक्ति को किसी तरह से हरे कृष्ण जप करने बोल दो, वो मुर्गी करना ही छोड़ देगा। खाने वालों को भक्त बनाओ, ले जाने वालों को भक्त बनाओ, जो मेन पोल्ट्री का इंचार्ज है उसको भक्त बना दो। You accommodate in your mind whatever way you want, but we have to ultimately preach. If you are not a part of the solution, you are a part of the problem. You should be a part of the solution. To the best of your ability, whatever you can. Okay. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Granth Raj Srimad Bhagavatam ki, Gaur Premanandi, Hari Hari. Thank you very much.